मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज 27 मार्च 2017 है और आज के इस afias.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं आप सभी अपने साथियों का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, दो दिनों के गैप के बाद हम लोग मिल रहे हैं, लेकिन आज के जो हमारे लाइफ मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है वह पिछले ही सब्जेक्ट का आप कह लीजिए कि एक कंटिन्यूअस पार्ट है। आपको ध्यान होगा कि पिछले सप्ताह के आखिरी में यानी कि शुक्रवार को हम लोग एक थ्योरी पर बात कर रहे थे। थ्योरी को मैंने उसे कन्वर्ट कर दिया था। वैसे समस्या ये थी कि हम जो सोचते हैं उसके बिल्कुल उल्टा ही होता है। इसमें कौन सी थ्योरी अप्लाई होती है, उस थ्योरी कैसे काम करती है, इसी के बारे में मैं आपसे बातचीत कर रहा था और मैं उसे ही आज कंटिन्यू करके मेरी कोशिश होगी कि उसे मैं आज पूरा कर दूं। दोस्तों, ये जो सब्जेक्ट है डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। सुनने में भले ही आसान सा लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके बारे में आपकी बहुत सही सही जानकारी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे जीवन के केंद्र में होता है। कैसे हमारे जीवन के केंद्र में होता है, इसकी पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और मेरे ऐसे प्रिय श्रोता जो इससे शुरुआत कर रहे होंगे, उन्हें मैं एक बहुत ही विनम्र सलाह देना चाहूंगा कि प्लीज वो इससे ठीक पहले वाले ऑडियो को भी जरूर सुन लें, तभी यह सेकंड ऑडियो उनके ठीक से समझ में आ पाएगा। और सच बात यह है कि जब तक कोई बात समझ में आती नहीं है, तब तक उसे हम अप्लाई भी नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, मुझे लगता है कि हमें एक थोड़ा सा रियलिटी चेक करना चाहिए कि क्या सच में यही होता है कि जो हम सोचते हैं उसका उल्टा होता है, या कभी कभी ऐसा होता है और वो कभी कभी का होना ही हमारे लिए हर समय का होना बन जाता है। लेट अस ट्राई टू चेक इट अप। इसे हम थोड़ा सा चेक करके तो देखें। आप सब थोड़ा सा वक्त निकालें और इत्मीनान के साथ बैठें। अब दोस्तों, मुझे लगता है कि हमें अपने को भी तो थोड़ा सा समय देना चाहिए। हम अपनी पढ़ाई को समय देते हैं, घर परिवार वालों को समय देते हैं, दोस्तों को समय देते हैं, सिनेमा को समय देते हैं, थोड़ा सा अपने को भी कभी समय दे दें। और अपने को समय देने का मतलब यही है कि अपने बारे में थोड़ा इत्मीनान के साथ बैठकर विचार करें। और उसी संदर्भ में मैं ये बात कह रहा हूं कि हम थोड़ा सा बैठें और विचार करें कि शाम को बैठिए आप और सोचिए कि आज मैंने इस पर विचार कीजिए, सोचिए नहीं कि दिन भर में क्या क्या सोचा था। मैंने सोचा था कि मैं सुबह 6 बजे उठ जाऊंगा, तो क्या मैं उठ पाया? मैंने सोचा था कि मैं आज इतनी पढ़ाई कर लूंगा, तो मैं क्या कर पाया? मैंने सोचा था कि मैं इस समय तक अपने स्कूल, कॉलेज, दुकान, खेत, जहां भी मैं काम करता हूं, अपने नौकरी वाली जगह पर पहुंच जाऊंगा, तो क्या मैं पहुंच पाया? नौकरी पर जाने से पहले मुझे बस पकड़नी थी, तो क्या मैं बस को पकड़ पाया? ये तो एक दिन की बात हुई। जिंदगी के इससे पहले के बहुत समय पर चले जाइए। आपने इतनी बार ट्रेन पकड़ी होंगी, तो क्या समय पर आप रेलवे स्टेशन पहुंच पाए? परीक्षा हॉल में आप समय में पर पहुंचे कि नहीं? परीक्षा में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो आपने समय पर पूरा किया या नहीं? यानी कि मैं ये वो घटनाएं बता रहा हूं जिनके बारे में हम सोचते हैं कि ऐसा होगा, होना चाहिए, और वैसा हुआ या नहीं। फ्रेंड्स, पूरी संवेदनशीलता के साथ आप रियलिटी चेक करके देखिए तो आपको एक आश्चर्यजनक सत्य हाथ लगेगा। सत्य से, जो वास्तविक सत्य है, जिसका जीवन से सीधा सीधा संबंध है, जो रोज हमारे जीवन में घटित हो रहा है, वह यह कि हम जो सोचते हैं 95% से ज्यादा वैसा हो जाता है, 99% वैसा ही होता है। आप जब किसी कुत्ते को पत्थर मारने के लिए पत्थर उठाते हैं तो आप देखिए कि ज्यादातर पत्थर लग ही जाता है। ज्यादातर चीजें तो वैसी ही हो रही हैं जैसी कि आप चाहते हैं। किसी से झगड़ा कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो बढ़ता चला जाएगा, और आपको मालूम था कि ये बढ़ता चला जाएगा। तो अब हमने 95% या कह लीजिए 98% के विरुद्ध जो 2% है, जो नहीं हो रहा है, उस पर अपने जीवन को केंद्रित कर दिया है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तो हम अपने साथ अन्याय कर रहे हैं, अपने साथ ही अन्याय कर रहे हैं। फ्रेंड्स, जिंदगी में हमारे साथ ज्यादातर जो कुछ भी हो रहा है वो वही हो रहा है जैसा कि हम सोचते हैं, राइट? लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि 2% ऐसा भी है कि वैसा हो जाता है जैसा हमने नहीं सोचा था या उसके बिल्कुल उल्टा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? आप देखिए, अब इसके बड़े स्पष्ट कारण है, बहुत स्पष्ट कारण है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा मित्रों कि आपको इस सत्य को स्वीकार कर लेना चाहिए, जैसे सूरज कभी मरता नहीं है, धरती कभी थमती नहीं है, आग कभी शीतल नहीं होती है, ठीक उसी तरीके से इस सत्य को स्वीकार कर लेना चाहिए कि होता वैसे ही है, उतना ही है, उसी समय है जब उसे होना चाहिए। ये सत्य है, उसे होना चाहिए, लेकिन हम इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पाते। सत्य को इसलिए स्वीकार नहीं कर पाते कि हम इस होने में जितनी भी चीजें शामिल हैं, मतलब ये जो घटना घटित हो रही है, या यूं कह लीजिए कि जो रिजल्ट हमारे सामने आ रहे हैं, उस रिजल्ट के होने में न जाने कितने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नोन अननोन चीजें शामिल हैं। हम नहीं जानते, हमको मालूम ही नहीं है। जिन चीजों के बारे में हम जानते हैं, हम केवल उन्हीं को आधार बनाकर अपना अनुमान लगाते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने फैसला किया कि मैं इस साल सिविल सर्विस क्वालिफाई कर जाऊंगा, ठीक है, मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी, तो तैयारी पर मेरा नियंत्रण है, तो मैं उस तैयारी में लगा हुआ हूं, राइट। सिलेबस को मैंने पढ़ लिया, सब कुछ, तो जो जो चीजें मैं जान रहा हूं वो चीजें तो मैंने कर ली, लेकिन मैं बहुत सी चीजें हैं जो नहीं जान रहा हूं और जो मेरे सिविल सर्वेंट बनने में रोल प्ले करेंगी। जैसे दूसरे लड़के भी तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है कि वो मुझसे बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हों, उनको जगह मिल जाएगी, मुझे जगह नहीं मिलेगी। तो ऐसे बहुत से अननोन फैक्टर्स हैं, बहुत से अननोन फैक्टर्स हैं, जिसमें समय भी होता है। अगर हम इसको परीक्षा के उदाहरण से, सिविल सर्विस के उदाहरण से हटाकर और उदाहरणों तक फैला दें, स्थान उसमें रोल प्ले करता है, उसमें समय रोल प्ले करता है, उसमें लोग रोल प्ले करते हैं, उस समय की मानसिकता प्ले करती है, नीतियां प्ले, पता नहीं कितनी सारी चीजें हैं। ये तो मैं वो चीजें बता रहा हूं जो अभी बोलते समय मेरे ध्यान में आ रही है, ये तो हजारों लाखों चीजें हैं जो अपना अपनी अपनी भूमिका निभाती हैं, और उन सबके मिलने से जो समीकरण बनता है, फिर वो रिजल्ट आता है। अब बहुत सी चीजें हम नहीं जान रहे हैं, हमने तो अपनी चीजें जो हम जानते थे उसके आधार पर अनुमान लगाया, लेकिन मित्रों इस बात पर विश्वास रखिए, ध्रुव सत्य है कि जो हुआ वह बिल्कुल वही हुआ जो हो सकता था, जो होना चाहिए। इसमें मुझे लगता है कि हम में से किसी को कतई कोई संदेह नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये जो प्रकृति है, जो कुछ हमें देती है वो प्रकृति देती है, ठीक है, मैं प्रकृति के रूप में उसने इस नेचर की बात नहीं कर रहा हूं, प्रकृति का मतलब समस्त ये जो दृश्य अदृश्य शक्तियां हैं इनको मिलाकर के प्रकृति बनी है, उसमें आप ईश्वर को भी शामिल कर सकते हैं, जो जो चीजें शामिल करना चाहें, संपूर्ण जो जगत है वो प्रकृति है। वो हमें नहीं जानती, सच पूछे तो हम भी उसे नहीं जानते, उसका हमसे कोई लेना देना नहीं है, वह बिल्कुल तटस्थ है, वह हमारे साथ अन्याय क्यों करेगी? ये बताइए कि अगर मैं जो सोच रहा हूं और उसके विरुद्ध ही हो रहा है, तो करने वाली तो ये प्रकृति है, यानी कि मैं जो जो मैंने किया उसको उसके मिलने के बाद रिजल्ट आ गया, तो ये जो छोटी छोटी जो चीजें मिली हैं, क्या ये मुझको जानती हैं? और अगर जानती भी है तो वो क्या मेरी दुश्मन है? और अगर दुश्मन भी है तो वो मेरी दुश्मन क्यों हो गई है? मैंने उनका क्या बिगाड़ा है भैया कि उन्होंने मेरे से आप वो दुश्मनी का बदला ले रही हैं? कुछ नहीं, वो तो हमें जानती ही नहीं। तो वो तो उसी तरीके से है जैसे गंगा का बहता हुआ पानी, गंगा के बहते हुए पानी में जो भी डुबकी लगाएगा, चाहे पापी हो, धर्मात्मा हो, चाहे चाकू हो, चाहे तलवार हो, कोई भी हो, वो तो उसी तरह से उसको धोएगी जैसे वो धोती है, उसके अंदर कोई भेदभाव नहीं है। मित्रों, जहां तक व्यक्ति के करने का सवाल है, जैसे मान लीजिए कि मैं आपके पास आता हूं तो आप मुझसे भेदभाव कर सकते हैं, आप मेरे पास आते हैं तो मैं भेदभाव कर सकता हूं, दुनिया भर के हमारे दिमाग में खंड खंड बने हुए हैं, जाति के आधार पर कर सकता हूं, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, वर्ग के आधार पर, भेद करने के न जाने कितने आधार है, लेकिन प्रकृति के पास तो कोई भी आधार नहीं है कि वो भेदभाव करे, वो तो सम दृष्टि है, उसके पास सभी को समान रूप में देखती है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि हमें इस तथ्य को पूरे दृढ़ता के साथ, पूरी वैज्ञानिकता के साथ और पूरे विश्वास के साथ स्वीकार करना चाहिए कि इस बार मैंने ये सोचा था लेकिन वो नहीं हो पाया। तो मैंने सोचा था, मेरे करने में या तो कुछ कसर रह गई, और अगर मेरे करने में चलिए कसर नहीं भी रही है तो कोई बात नहीं, और जो दूसरी चीजें होनी चाहिए थी इसको होने के लिए उनके करने में कसर रह गई है। उसी तरह से है दोस्तों, शायद इस उदाहरण से ये चीज और स्पष्ट हो जाए कि एक किसान है, उसके पास 30-40 साल की खेती का अनुभव, वो अपनी मिट्टी को जानता है, अपने बीज को जानता है, अपने बादलों को जानता है, अपने मौसम को जानता है, पूरी की पूरी खेती के वो शास्त्र को जानता है। अब वो बो रहा है, उसने जमीन में बीज बो दिए, और सच पूछे तो साहूकार से कर्जा भी ले लिया या बैंक से कर्जा भी ले लिया, क्योंकि उसको बेटी की शादी करनी थी। दुर्भाग्य से मैं ये उदाहरण जानबूझ करके दे रहा हूं दोस्तों कि बेटी की शादी में ही कर्जा लेना पड़ता है। पता नहीं वो दिन कब आएगा जबकि हमें ऐसा नहीं करना पड़ेगा। लेट अस होप, हम उस दिन की प्रतीक्षा करते हैं। अब उसने सब अपना काम किया, अब उसको उम्मीद है कि अनाज होगा और मैं अनाज बेचकर अपना कर्ज चुका दूंगा। बात खत्म हो गई, आंधी तूफान आए, वर्षा नहीं हुई, वर्षा हो गई तो पता लगा कीड़े मकोड़े लग गए, कीड़े मकोड़े नहीं लगे तो पता लगा कि रात में जानवर उसको नष्ट कर गए, अगर जानवर नष्ट नहीं करके गए तो पता लगा कि फसल की चोरी हो गई। अब ये जो अननोन फैक्टर है, इन अननोन फैक्टर का क्या करेंगे? और अगर ये अननोन फैक्टर घटित हो जाते हैं तो फिर वही होगा कि मैंने सोचा जो था उसके बिल्कुल उल्टा हो गया। ये तो मैं सोच रहा था कि मैं कर्ज चुका दूंगा, ये तो कर्ज और डबल हो गया। तो दोस्तों, इस अंतर को जिस दिन आप समझ लेंगे, आप देखेंगे आपका अपने भाग्य पर नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। दोस्तों, हाथ की रेखाओं का मुझे लगता है यही सांकेतिक अर्थ है कि जो अगर रेखाओं में भाग्य निहित है, इसका मतलब है आपके हाथ में आपका भाग्य निहित है। आप जितना कर्म करेंगे, जिस तरीके से कर्म करेंगे, उसी तरह से आपके जो भाग्य की रेखाएं हैं रूप लेती चली जाएंगी। तो मित्रों, इसी के साथ ही अब मैं इस टॉपिक को यहीं अपनी तरफ से समाप्त करता हूं। हाँ, यदि आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न आएंगे और मुझे ऐसा लगेगा कि इसका जवाब दिया जाना चाहिए तो फिर हम उसे आगे बढ़ाएंगे, अदरवाइज नए विषय आप लोगों से लगातार मैं आमंत्रित करता ही रहता हूं, और फिर से मैं आमंत्रित करता हूं। और दोस्तों, अब इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।